ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवारों के समर्थन में केरल के पालक्काड में रोड शो कर रहे हैं। इसके बाद श्री मोदी तमिलनाडु में सेलम के लिए रवाना होंगे, जहां वे आज दोपहर बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी चुनाव प्रचार में लगे हैं। तेलंगाना में दो दिन पहले ही बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ने वाले भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी आरएस प्रवीण कुमार भारत राष्ट्र समिति बीआरएस में शामिल हो गए हैं। बीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने कल शाम उनका पार्टी में स्वागत किया। प्रवीण कुमार के साथ बीएसपी के कई नेता और राज्य इकाई के पदाधिकारी भी बीआरएस में शामिल हो गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक सेवा अधिकारियों से कुशल और स्मार्ट प्रशासन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, ब्लॉकचेन और बिग डाटा एनालिटिक्स जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि नए विचारों और नई प्रौद्योगिकी के साथ समृद्ध और विविधतापूर्ण अनुभव जैसे प्रभावशाली परिवर्तन लाए जा सकते हैं, जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति भवन में कल राज्य लोक सेवा अधिकारियों से ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि अधिकारियों में कोई भी विकास कार्य करते समय सतत और समावेशी दृष्टिकोण को ध्यान में रखना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल अमरीका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय क्षेत्रीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने पिछले महीने नई दिल्ली में आयोजित इंडेक्स एक्स शिखर सम्मेलन और दोनों देशों की तीनों सेनाओं के बीच अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ जैसे हाल के द्विपक्षीय आयोजनों की भी समीक्षा की। अमरीकी रक्षा मंत्री ने हिंद महासागर क्षेत्र में डकैती के विरूद्व चलाए जा रहे अभियानों में भारतीय नौसेना की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। भारत और अमरीका के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास भारत के पूर्वी समुद्री तट पर शुरू हो गया है। 31 मार्च तक चलने वाले इस अभ्यास का उद्देश्य मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए अंतर संचालन विकसित करना है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच तेज और सुचारू समन्वय के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को परिष्कृत करना है। बल्गारिया के राष्ट्रपति रूमेन राडिफ ने बल्गारिया के अपहृत जहाज एमवी रुएन के बचाव के लिए चलाए गए सफल अभियान के लिए भारतीय नौसेना का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कल राष्ट्रपति राडिफ ने बल्गारिया के 7 नागरिकों सहित चालक दल के सदस्यों का बचाव करने के लिए भारतीय नौसेना को धन्यवाद दिया। रोएन पोत का पिछले वर्ष दिसंबर महीने में अरब सागर में समुद्री डाकुओं ने अपहरण कर लिया था। इस जहाज पर बल्गारिया के 7, म्यांमा के 9 और अंगोला का 1 नागरिक सवार था। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए लखनऊ और देहरादून के बीच एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का निर्णय किया है। ये वंदे भारत ट्रेन इस महीने की 26 तारीख को शुरू होगी। उत्तर रेलवे की विज्ञप्ति के अनुसार वंदे भारत एक्सप्रेस प्रत्येक सोमवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। ये रेलगाड़ी लखनऊ से चलकर बरेली जंक्शन, मुरादाबाद जंक्शन और हरिद्वार होते हुए देहरादून पहुंचेगी। 2018 के बाद नई दिल्ली को लगातार चौथे वर्ष विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी शहर का दर्जा मिला है। स्विस संगठन IQAIR ने अपनी हाल की रिपोर्ट में कहा है कि नई दिल्ली की वायु गुणवत्ता 2023 में सबसे खराब श्रेणी में थी। मौसम विभाग ने ओडिशा, छत्तीसगढ़, बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में अलग अलग स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने बताया है कि 21 मार्च तक झारखंड, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और बिहार में गरज और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तेलंगाना में अगले 2 दिन तक गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 आज स्विट्जरलैंड में शुरू होगा। पुरुष सिंगल्स में 7वीं वरीयता प्राप्त भारत के लक्ष्य सेन मलेशिया के लियोंग जून हाओ के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।